संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 17 सितंबर 2021 के बुलेटिन की सुर्खियां। यूएन महासभा का 76वां सत्र हुआ शुरू, कोविड 19 के कारण ये सत्र भी होगा चुनौतीपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र संगठन के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट महासभा में पेश। कोरोना वायरस महामारी के दौर में संगठन का अनेक क्षेत्रों में रहा सक्रिय सहयोग व समर्थन। कोविड 19 महामारी के बावजूद जलवायु परिवर्तन की रफ्तार में नहीं हुई है कोई कमी। और मानवाधिकारों के लिए गंभीर जोखिम पेश करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों पर स्वैच्छिक रोक लगाए जाने की पुकार। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को यूएन महासभा के 75वें सत्र का समापन करते हुए कहा कि विश्व ने कोविड 19 महामारी के रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे चुनौतीपूर्ण समय देखा है। उन्होंने कहा कि बीते सत्र ने गहरी होती विषमताएं, धराशायी होती अर्थव्यवस्थाएं और लाखों करोड़ों लोगों को अत्यधिक निर्धनता के गर्त में धकेले जाते हुए देखा है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
I solemnly declare that I shall truthfully perform my duties.
मालदीव के राजनयिक अब्दुल्ला शाहिद ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ ली। 75वें सत्र की अध्यक्षता तुर्की के राजदूत वोल्कान बोजगीर के पास थी, जिन्होंने परंपरागत हथौड़ा नए महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को सौंपा और हथौड़े की चोट के साथ ही 76वें सत्र की शुरुआत हो गई।
It is my great pleasure and honor to declare open the 76th regular session of the General Assembly and call to order its first plenary meeting.
नए महासभा प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कोविड 19 महामारी से उबरने, टिकाऊ पुनर्निर्माण में सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करने और संयुक्त राष्ट्र में फिर से ऊर्जा भरने की प्रक्रिया में आशा का प्रतीक होगा।
On recovering from COVID-19, vaccinating the world is my top focus.
महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद कह रहे थे कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता कोविड 19 से उबरना और दुनिया का टीकाकरण करना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक टीकाकरण में पसरी विषमता को दूर किया जाना होगा। इस क्रम में उन्होंने विश्व नेताओं और अन्य विशेषज्ञों के साथ एक बैठक बुलाने की बात कही है। उनकी दूसरी प्राथमिकता महामारी से उबरते समय टिकाऊ पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करना है। इस वर्ष 7 जून को यूएन महासभा ने मालदीव के राजनयिक और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक जनरल डिबेट की शुरुआत 21 सितंबर को होगी और ये 27 सितंबर तक चलेगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड 19 महामारी की वजह से स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक, आर्थिक व मानवाधिकारों के लिए पैदा हुए संकटों ने न केवल बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है बल्कि उनकी कठिन परीक्षा भी ली है। यूएन प्रमुख ने अपने संगठन के कामकाज पर गुरुवार को वार्षिक रिपोर्ट पेश की है, जो दर्शाती है कि 75 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से अब तक कोविड 19 महामारी सबसे बड़ी सामूहिक वैश्विक चुनौती है। महासचिव ने कहा कि व्यक्तियों व रोजगारों की सुरक्षा से लेकर टिकाऊ व न्यायोचित पुनर्बहाली सुनिश्चित करने में देशों की सरकारों को सहायता देने तक संयुक्त राष्ट्र ने महामारी पर जवाबी कार्रवाई में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस संकट के स्वास्थ्य, मानवीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का सामना करने में करीब 160 देशों को समर्थन दिया है। साथ ही दुनिया भर में 26 करोड़ छात्रों के लिए घर बैठकर शिक्षा संभव बनाने में सहायता की है। कोविड 19 महामारी के विषय में फैली भ्रामक जानकारियों व धारणाओं को दूर करने में यूएन की वेरीफाइड नामक पहल ने कम से कम 50 भाषाओं में 1000 से अधिक डिजिटल सामग्री प्रकाशित की हैं। संगठन ने 23 देशों में दास्ता के समकालीन रूपों के 8594 पीड़ितों को सहारा दिया है और 78 राष्ट्रों में यातना के 40,000 से अधिक पीड़ितों को मदद दी है। संयुक्त राष्ट्र ने 81,000 से अधिक देश विहीन व्यक्तियों को पहचान दिलाने और उनकी शिनाख्त की पुष्टि करने में सहायता की है। साथ ही युद्ध, अकाल और यातना से जान बचाकर भाग रहे लगभग 8,25,00,000 लोगों को सहारा दिया है। कोविड 19 महामारी के बावजूद जलवायु परिवर्तन की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में आर्थिक गतिविधियों में आए ठहराव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा में अस्थायी तौर पर कुछ कमी आई थी, मगर अब ये फिर तेज गति से बढ़ रही है। रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है कि दुनिया आने वाले वर्षों में तापमान में खतरनाक बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही है। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट यूनाइटेड इन साइंस 2021 के अनुसार वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता रिकॉर्ड स्तर पर है और ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं कि हम हरित पुनर्बहाली की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि की वजह से विश्व भर में चरम मौसम की विनाशकारी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनका अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर भीषण असर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के 1.5 डिग्री सेल्सियस की दहलीज को अगले 5 सालों में पार कर जाने की आशंका है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उन प्रणालियों की बिक्री व इस्तेमाल पर स्वैच्छिक रोक लगाए जाने का आग्रह किया है, जिनसे मानवाधिकारों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं। यूएन मानवाधिकार एजेंसी की प्रमुख ने बुधवार को अपने एक वक्तव्य में कहा कि स्वैच्छिक रोक को तब तक जारी रखना होगा जब तक पर्याप्त एहतियाती उपाय लागू नहीं किए जाते हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने स्पष्ट किया कि एआई की जिन एप्लीकेशंस को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में एक डायरेक्टर पैगी हिक्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवाधिकारों के लिए बहुत विशाल खतरा पेश करती है। इसके बेहद खतरनाक नतीजों के बावजूद इसे बिना समुचित नियमन व निगरानी के ऐसी प्रणालियों में लागू किया गया है जो हमारी बुनियादी स्वतंत्रताओं के लिए बहुत अहम है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगली पशुओं के मांस की घरेलू खपत का ऐसी अनेक प्रजातियों पर असर हो रहा है जिन्हें जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों की रक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की एक संधि CMS के तहत संरक्षण प्राप्त है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
बुधवार को एक रिपोर्ट में पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के बढ़ते जोखिम के प्रति भी आगाह किया गया है। अध्ययन के मुताबिक CMS संधि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त 70% से अधिक स्तनपायी प्रजातियों का इस्तेमाल जंगली मांस के उपभोग के लिए किया जाता है। इस वजह से अनेक प्रवासी स्तनधारी आबादियों में तेज गिरावट आई है और कुछ तो विलुप्त भी हो गई है। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि जंगली मांस की खपत कानूनी व गैर कानूनी ढंग से पशुओं का शिकार किए जाने का एक प्रमुख कारण है। बताया गया है कि जिन 105 प्रजातियों का अध्ययन किया गया है उनमें से 67 प्रजातियों का शिकार किया जाता है और ये शिकार मुख्यतः उनके मांस का उपभोग करने के लिए किया जाता है। इन जंगली प्रजातियों के जीवों के शिकार की अन्य वजहों में सांस्कृतिक परंपरा, चिकित्सा संबंधी उपयोग, मानव वन्य जीवन टकराव, शिकार और खेलकूद जैसे कारण शामिल है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि कामकाज संबंधी बीमारियों और चोटों की वजह से वर्ष 2016 में 19,00,000 लोगों की मौत हुई। ये पहली बार है जब UN एजेंसियों ने साझा रूप से इस विषय में अनुमान पेश किए हैं। इस रिपोर्ट में कामकाज संबंधी अधिकतर मौतों के लिए श्वसन तंत्र और हृदय वाहिनी बीमारी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को वजह बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुल मौतों में 81% गैर संचारी बीमारियों के कारण हुई। सबसे अधिक मौतें सांस लेने में होने वाली दिक्कतों की बीमारी की वजह से हुई, जिनकी संख्या 4,00,000 थी। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत।